India's great need.
भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता.
Holy men.
पवित्र लोग.
With right doctrine.
सही सिद्धांतों के साथ.
Can properly interpret the word of God.
जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से अनुवाद कर सकें.
Clearly teach the word of God.
और जो परमेश्वर के वचन को स्पष्टता से सिखा सकें.
Can pastor and shepherd the people of God.
और जो परमेश्वर के लोगों को सही तरह से चरवाही कर सकें.
Can build and establish the church of God.
और परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना कर सकें.
Where does it begin?
कहां आरंभ होता है इसका?
In the preacher's life.
प्रचारक के जीवन में.
Preacher's doctrine.
और प्रचारक के सिद्धांत में.
Preacher's preaching.
और प्रचारक के प्रचार में.
If he doesn't have a good life.
अगर उसका अच्छा जीवन नहीं है.
If he doesn't have right doctrine.
और अगर सही सिद्धांत नहीं है.
He cannot establish a biblical church.
तो वो बाइबल पर आधारित कलीसिया की स्थापना नहीं कर सकता.
Paul says to take care of your own life.
पौलुस कहता है अपने जीवन की देखभाल करो.
And to your doctrine.
और अपने सिद्धांतों को ध्यान दो.
You will save yourself.
तो आपने आपको बचाएंगे.
And you will save those that hear you.
और जो लोग सुनते हैं उनको आप बचाएंगे.
If you want to have right doctrine.
अगर आप सही सिद्धांत चाहते हैं.
If you want to have clear preaching.
और अगर आप स्पष्ट प्रचार चाहते हैं.
You must have a proper interpretation of the word of God.
तो परमेश्वर के वचन का आपका सही व्याख्या होना चाहिए.
There's a lot of false teaching in India today.
भारत में बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं आज.
What is its source?
उसका सूत्र क्या है?
Wrong interpretation of the word of God.
परमेश्वर के वचन का गलत अनुवाद.
You must grow in your understanding of how to properly interpret the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन के व्याख्या में बढ़ना होगा.
That is your calling.
ये आपकी बुलाहट है.
That is your ministry.
ये आपकी सेवकाई है.
That is your responsibility.
ये आपकी जिम्मेदारी है.
And one day you will give an account.
और एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा.
You have the most serious responsibility in all the world.
संपूर्ण संसार में ये बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है.
You must accurately handle the word of God.
और आपके आपको परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उपयोग करना है.
So we have listed some basic principles of Bible interpretation.
और बाइबल के व्याख्या के कुछ आधारभूत सिद्धांत हमने आपको बताए.
And we have sought to apply it to several practical examples of doctrine and of life.
और जीवन और सिद्धांतों पर हमने उनको लागू करने का प्रयास किया है व्यवहारिक तौर पे.
Let's look at several others very quickly.
एक उनमें से कुछ और को हम देख लें बड़ी जल्दी.
Look in the Gospel of John.
सुसमाचार देखिए यूहन्ना के सुसमाचार.
John chapter 8.
यूहन्ना 8वां अध्याय.
We're talking about how to properly interpret the word of God.
परमेश्वर के वचन को कैसे सही तरीके से व्याख्या करना उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. हम लोग कई उदाहरणों को देख रहे हैं यहां पे.
John chapter 8.
यूहन्ना उसका 8वां अध्याय.
Jesus is talking to the Jews.
यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं.
Verse 31.
31वां पद.
He said, if you continue in my word, you are truly my disciple. You will know the truth. And the truth will set you free.
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले होगे और तुम सत्य को जानोगे सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा.
They said, we are Abraham's children. We've never been enslaved to anyone.
उन्होंने कहा हम इब्राहिम के वंशज हैं हम तो अभी तक किसी के दास नहीं तो फिर कैसे कहते तुम स्वतंत्र हो जाओगे.
But Jesus said, verse 34, truly I say to you that everyone who commits sin is a slave of sin.
यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूं हर एक जो पाप करता है पाप का दास है.
And he goes on to talk to them that their true father is not Abraham, their true father is the devil.
और यीशु मसीह उनसे आगे बढ़कर कहता है कि उनका सच्चा पिता इब्राहिम है लेकिन उनका सच्चा पिता तो शैतान है.
Now Jesus was willing to tell men the truth.
यीशु मसीह लोगों को सत्य बताने के लिए तैयार थे.
And if you're going to be a preacher,
और अगर आप एक प्रचारक बनना चाहते हैं
must be willing to tell men the truth.
तो आप लोगों को सत्य बताने के लिए तैयार रहिए. आप उनके कानों को नहीं खुजला सकते.
You must be willing to speak to their heart.
आपको उनके हृदयों से बात करने के लिए तैयार होना पड़ेगा.
Now notice toward the end of the chapter,
और इस अध्याय के अंत की तरफ देखिए. इस अध्याय के अंत में देखिए
Verse 56. Jesus said, Abraham rejoiced to see my day.
यीशु मसीह कहते हैं कि इब्राहिम मेरा दिन देख करके आनंदित हुआ और वो खुश हुआ इस बात पर.
So here's the question.
तो प्रश्न ये यहाँ पे.
How did Abraham see the day of Christ?
इब्राहिम ने यीशु मसीह के दिन को कैसे देखा ये बताइए.
Remember what we said before.
अब आपको याद है हमने पहले क्या कहा था.
God revealed himself in the Old Testament. He did primarily
और जब परमेश्वर ने अपने आप को पुराने नियम में प्रकट किया तो परमेश्वर ने प्राथमिकता से दो तरीके से अपने आप को प्रकट किया.
नंबर वन बाय हिज वर्ड. word.
पहली बात अपने वचनों के द्वारा.
Number two, by his act.
दूसरी बात अपने कार्यों के द्वारा.
How did God reveal himself to Adam?
और परमेश्वर ने आदम को अपने आदम पर अपने आप को कैसे प्रकट किया?
Adam sinned.
आदम ने जब पाप किया.
God made him a promise.
परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी उसको.
God did a particular thing.
और फिर परमेश्वर ने एक विशेष कार्य किया वहाँ पे.
He spoke a word to him.
उसने एक शब्द बोला उसको.
And then he did something for him.
और फिर उसने कुछ किया उसके लिए.
What did he speak to him?
उसने क्या बात किया उससे?
Genesis 3, chapter 15.
और उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 15 पर.
I will put, he's speaking to the devil. He said, I will put enmity between you and the woman and between your seed and her seed.
और वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीज के बीच में और स्त्री के बीज के बीच में वंशज के बीच में मैं दुश्मनी डालूंगा शत्रुता डालूंगा.
He shall bruise your head, but you shall bruise his heel.
तुम उसके सरों को कुचलोगे लेकिन वो तुम्हारे एड़े को डसेगा.
That's the first promise of redemptive revelation.
और ये है छुटकारे के प्रकाशन का पहली प्रतिज्ञा.
The seed of the woman was who?
और स्त्री का बीज स्त्री का वंशज कौन था?
It was Christ.
वो यीशु मसीह था.
And he would bruise the serpent on the head.
और वो शैतान को उसके सर को उसके सर पे कुचलेगा.
And how and when did he do that?
और उसने कब और कैसे किया ये कार्य?
On the cross.
क्रूस के ऊपर.
And ultimately when he returns again.
और फिर अंततः जब वो वापस आएगा.
Paul said in Romans 16.
पौलुस कहता है रोमियों 16 अध्याय में.
God will soon bruise Satan under your feet, crush Satan.
परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल देगा.
Number two.
दूसरी बात.
How did God reveal his redemptive purpose to Adam?
परमेश्वर ने अपने छुटकारे के उद्देश्यों को आदम पर कैसे प्रकट किया?
He clothed him with skins to cover his shame and his nakedness.
परमेश्वर ने आदम को खाल से जानवर की खाल से ढक दिया ताकि उसके उसके शर्म को और उसके नंगापन को ढक दे. प्रभु जी.
Now where did the Lord get those skin?
प्रभु जी कहाँ मिले वो?
क्या
सड़क पे लेकर गए थे प्रभु जी उसको?
Where did he get them?
प्रभु जी कहाँ से मिले उस जानवर की खाल? कहाँ से पाया प्रभु जी ने?
An animal had to die.
किसी एक जानवर को मरने की आवश्यकता पड़ी.
And he killed an animal and took the skin and covered Adam's shame and his nakedness.
और उसने एक जानवर को लिया उसको मारा और उसके द्वारा आदम के नंगेपन को और उसके शर्म को ढक दिया प्रभु जी.
And what God spoke,
और जो प्रभु जी ने बोला.
And what God did,
और जो प्रभु जी ने किया.
The revelation of his ultimate redemptive purposes in Jesus Christ.
और जो कुछ भी यीशु मसीह ने बोला और परमेश्वर ने बोला और जो कुछ भी परमेश्वर ने किया वो उसके अंत में यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे का जो काम होने वाला था उसका प्रकटीकरण था.
Jesus said, Abraham rejoiced to see my day, and he was glad.
यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम ने मेरे दिन को देखा और वो खुश हुआ प्रसन्न हुआ.
How did Abraham see the day of Christ?
और इब्राहिम ने कैसे मसीह के दिन को देखा?
Can you think of any verse in the New Testament that would help us interpret that verse?
क्या आप कोई नए नियम में कोई पद ढूंढ सकते हैं जो हमको ये समझने में सहायता करेगा अनुवाद करने में सहायता करेगा?
What are two of the main passages in the New Testament to speak more in detail about Abraham?
और कोई दो और खंड है नए नियम में जो और भी अधिक विस्तार से इब्राहिम के बारे में बात करते हैं?
Romans chapter 4.
रोमियों उसका 4 अध्याय.
Where else?
और कहाँ पे?
Where?
Galatians.
Yes. Where else?
Hebrew 11.
Hebrews 11.
Hebrews 11.
So what we do is we look at passages in the New Testament that further speak concerning Abraham, and we ask this question.
और हम और खंडों को देखते हैं जो यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं और फिर हम इब्राहिम के बारे में बात करते हैं और फिर हम ये प्रश्न पूछते हैं.
What did God speak to Abraham?
परमेश्वर ने क्या बात की इब्राहिम से?
And what did God do with or to Abraham?
और फिर परमेश्वर ने क्या किया क्या कहा इब्राहिम को?
And in Romans chapter 4.
और रोमियों से 4 अध्याय में.
It says that God spoke a promise. promise to Abraham.
और इब्राहिम ने परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी इब्राहिम को.
Quoting Genesis chapter 12 and Genesis chapter 15.
उत्पत्ति 12 और उत्पत्ति 15 को उद्धृत करते हुए प्रभु ने बोला.
He said, "Go out and look at the stars; so shall your descendants be."
और प्रभु ने कहा कि तुम वहाँ जाके तारों को देखो और जिस तरह से तारे उसी तरह से तुम्हारे भी वंशज होगी.
And it said Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness.
और कहा जाता है उसमें लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई.
So Paul asked this question.
तो पौलुस ने ये प्रश्न पूछा.
Was he counted righteous before he was circumcised or after he was circumcised?
तो पौलुस ने ये पूछा कि वो इब्राहिम धर्मी ठहराया गया खतना होने से पहले कि खतना होने के बाद. खतना होने से पहले खतना होने के बाद.
They say before.
Before. पहले.
And so what is Paul trying to prove in Romans chapter 4?
तो पौलुस यहाँ पे क्या रोमियो चौथे अध्याय में क्या साबित करने का कोशिश कर रहा है?
Abraham is the father of those that are from the circumcision, that is the Jew, and he's also the father of those from the uncircumcision, that is the Gentile.
कि इब्राहिम जो है पिता है उनका जो खतने से नहीं है गैर यहूदी लोग और उनका भी पिता है जो खतने से हैं जो कि यहूदी लोग हैं.
Both Jew and Gentile are sons of God and children of Abraham by faith in Jesus Christ.
और दोनों यहूदी गैर यहूदी परमेश्वर की संतान हैं विश्वास जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं विश्वास के द्वारा.
Look at Hebrews chapter 11.
और इब्रानियों उसके 11 अध्याय देखें.
Scripture interprets Scripture.
परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन का व्याख्या करता है.
And in chapter 11, the writer of Hebrews speaks of Abraham.
और इब्राहिमियों की पुस्तक में 11 अध्याय में जो इब्राहिमियों के लेखक है वो इब्राहिम के बारे में बात करता है. इब्राहिमियों के लेखक इब्राहिम के बारे में बात करता है.
It begins in verse 8 and says, when he was called, verse 8, he obeyed by going out, going to a place where he did not know where he was going.
इब्राहिमियों के लेखक 11 अध्याय में 8 पद में इब्राहिम के बारे में बात करते कहता है कि विश्वास से इब्राहिम जब बुलाया गया तो वो आज्ञा मान के ऐसे स्थान चला गया जो उत्तराधिकार में से मिलने आ रहा.
Verse 9.
9वें पद में.
By faith he lived as an alien in the land of promise, a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob.
और उसे कहा गया कि वो 9वें पद में देखिए विश्वास प्रतिज्ञा देश में परदेशियों के रहा अर्थात प्रदेश में इज़ाक और याकूब के साथ उसी देश में प्रतिज्ञा की तैयारी तंबू में रहा.
He was looking for a city which had foundations, who author and builder is God.
और वो एक ऐसे शहर की ओर देख रहा था जिसका बनाने वाला परमेश्वर है.
Now look carefully at verse 17.
और 17 पद को ध्यान से देखिए जरा.
By faith Abraham, when he was tested, he offered up Isaac.
और विश्वास से ही इब्राहिम ने परखे जाने के समय इज़ाक को बलि चढ़ाया.
And he who had received the promise was offering up his only begotten son.
और फिर जिसने प्रतिज्ञा मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि पे चढ़ाने पे था.
The promise was that in Isaac all your descendants will be called.
और प्रतिज्ञा ये थी कि इज़ाक से ही से तेरा वंश चलेगा.
God called Abraham to deliver up Isaac.
परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया कि वो इसहाक को वरदान बलिदान कर दें.
Abraham immediately obeyed.
और इब्राहिम ने तुरंत सुना.
And what does verse 19 tell us?
और 19वां अध्याय को क्या बताता है?
What was Abraham thinking?
और इब्राहिम क्या सोचता था 19 पद के अनुसार देखिए क्या सोचता था.
He was thinking that God was able to raise people even from the dead.
तो यहाँ पे इब्राहिम 19 पद के अनुसार हमको बताया जा रहा है कि इब्राहिम ये सोच रहा था कि परमेश्वर जो है मृतकों को भी और कि परमेश्वर जो है मृतकों को भी जिला सकते हैं और इज़हाक में एक प्रारूप में एक प्रकार से वो उसको प्राप्त हुआ वे लोगों की प्रतिज्ञा.
And when he raised the knife and was about to kill Isaac.
और जब उसने अपने चाकू को उठाया इज़हाक को मारने के लिए.
What was in his mind?
तो अब आप ये सोचिए जब इब्राहिम चाकू उठा रहा है इज़हाक को मारने के लिए तो इज़हाक इब्राहिम के दिमाग में क्या चल रहा है उस समय. इब्राहिमियों का लेखक क्या बता रहा है हमको.
Now, Moses doesn't tell us in Genesis.
अच्छा मूसा तो उत्पत्ति में हमको ये नहीं बताता कि क्या चल रहा है इब्राहिम के दिमाग में लेकिन इब्राहिमियों का लेखक हमको क्या बताता है कि इब्राहिम के दिमाग में क्या चल रहा है उत्पत्ति में.
Where did the writer of Hebrews come up with it?
ये जो इब्राहिमियों का लेखक है उसको कहां समझ में आ गया वाली बात बताइए.
He didn't read it in Genesis.
उसने उत्पत्ति में तो नहीं पढ़ा ये बात.
But he said Abraham was willing to kill his own son because by faith in his own mind and heart he believed God was going to raise him from the dead.
लेकिन इब्राहिमियों का लेखक हमको ये बता रहा है कि इब्राहिम उस समय जब चाकू उठाता तो उसके दिमाग में ये चल रहा है और वो विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर उसके बेटे को मृतकों में से जीवित करेगा.
Because God had given him a promise.
क्योंकि परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा
In Isaac, all your descendants will be blessed.
कि इसहाक में तेरे सारे वंशज जो हैं चलेंगे उनको आशीष मिलेगी.
So he had a dilemma.
तो उसके एक प्रश्न था उसके सामने.
Isaac was the child of promise through whom the blessing would come.
इसहाक था वो प्रतिज्ञा का संतान जिसके द्वारा सारी आशीष आने वाली थी.
God told him to put him to death.
लेकिन प्रभु जी तो कह रहे हैं उसको मार दो तुम जान से अभी.
Abraham resolved this dilemma.
तो कैसे इब्राहिम ने अपने दिमाग में जो अंतर्द्वंद चल रहा था उसको कैसे उसने उसको सुलझाया.
The writer of Hebrews said in his mind, in his heart, he believed God was going to raise him from the dead.
क्योंकि इब्राहिम के लेखक हमको ये बता रहा है कि इब्राहिम के दिमाग में ये बात स्पष्ट थी यद्यपि परमेश्वर उसे कह रहा मार दो लेकिन प्रभु जी उसको जिंदा कर देंगे. इसलिए उसने वो चाकू उठा लिया उसको मारने के लिए जान से.
Said, Abraham, stop.
और तर फिर स्वर्गदूत ने कहा इब्राहिम रुक जाओ.
And he looked over in a bush.
और फिर उसने उठ करके वो झाड़ी में देखा.
And what did he see?
और उस झाड़ी में क्या देखा उसने.
A ram.
एक मेढ़ा.
With his head caught in the limb.
उसका जो है सर जो फंसा हुआ था उसमें.
And what did Abraham do?
और इब्राहिम ने क्या किया.
He went and got the ram.
और उसने जाकर के मेढ़ा को पकड़ा.
And he put him in the place of his son.
और उसने अपने बेटे की जगह पे उसे डाल दिया.
And he received his son back as one alive from the dead.
और फिर उसने अपने बेटे को एक ऐसे जीवित व्यक्ति के समान वापस प्राप्त कर लिया पुनः प्राप्त कर लिया.
Jesus said this.
तो यीशु मसीह ने ये कहा.
Abraham rejoiced to see my day.
इब्राहिम मेरे दिन को देख करके प्रसन्न हुआ. तो कैसे इब्राहिम ने यीशु मसीह के दिन को देखा. विश्वास की आंखों से कहां देखा.
He saw him in two places, two things.
उसने दो जगह देखा उस बात को.
He saw him in his son.
उसने अपने बेटे में देखा उसे.
That was raised back from the dead.
क्योंकि वो मृतकों में से मानो जिला दिया गया दोबारा. दूसरी बात.
He saw him in a ram.
उसने उस मेढ़े में उसको देखा.
Who was substituted in the place of his son.
जो कि उसके बेटे के बदले में उसकी जगह में.
Abraham didn't know as much as you know.
और इब्राहिम को इतना नहीं मालूम था जितना आपको मालूम है.
Because he did not have the full revelation of the purposes of God.
क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्यों का संपूर्ण प्रकाशन उसके सामने अभी था नहीं तो उसको मालूम नहीं पूरी बात. लेकिन वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता था. और उसने ये विश्वास किया कि उसके जो वंशज होंगे इस चंद्रमा आकाश के तारों के समान होंगे. और उसको ये मालूम था ना सिर्फ उसके स्वयं के शरीर से संतान होंगे लेकिन संपूर्ण संसार के लोग उससे आशीषित होंगे. और वो आप और हम हैं.
So when he raised the knife,
और फिर जब उसने चाकू को उठाया,
he believed God was going to raise Isaac from the dead.
उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर मृतकों में से इसहाक को उठा खड़ा करेगा.
And it says he received him back as a type.
और उस यहाँ पे लिखा है कि उसने एक प्रारूप के रूप में उसको वापस प्राप्त किया.
A type of whom and what?
और एक दृष्टांत के रूप में किसके रूप में? किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में. यीशु मसीह के रूप में उसके जी उठने के उससे मिलन हमारा. और संपूर्ण संसार के राष्ट्र उसमें आशीषित होंगे. और हमारा स्वयं का मृतकों में से जी उठना. और फिर उसने उसे एक मेढ़े में देखा. आप समझ रहे इस बात को नहीं समझ रहे.
You know more than Abraham did.
आप इब्राहिम से ज्यादा जानते हैं.
Abraham rejoiced to see the day of Christ.
इब्राहिम मसीह के दिन को देख करके आनंदित हुआ.
And you need to understand the unfolding of the purposes and promises of God through redemptive history.
आपको परमेश्वर की योजनाओं को जो कि छुटकारे के इतिहास में होकर के प्रकट होती हैं उसको आपको समझना है.
So you can make a connection between the Old Testament and the New Testament.
ताकि फिर आप पुराने नियम में और नए नियम में जो संबंध है उसको आप समझ सकें.
And when Jesus said these words,
और जब यीशु मसीह ने इन शब्दों को कहा,
it confused the Jews.
तो जो यहूदी लोग हैं वो लोग गड़बड़ा गए.
Because they also said, before Abraham was, I am.
क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ ये भी कहा, इससे पहले इब्राहिम है, मैं हूँ.
They said, you're not yet 50 years old.
और फिर
उन्होंने यीशु मसीह
कहा, तो भी 50 साल के भी नहीं हो, तुम कहते हो कि तुम इब्राहिम से ज्यादा पुराने हो।
He said, Abraham rejoiced to see my day. He was glad.
और फिर यीशु मसीह ने कहा, इब्राहिम मेरा दिन को देख करके आनंदित हुआ।
Do you understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
How did we make that interpretation?
ये अनुवाद हमने कैसे किया यहाँ
पे? We looked at several passages in the rest of the New Testament that helped us interpret Jesus' meaning.
हमने नए नियम के कई खंडों को देखा जो कि हमें यीशु मसीह के अर्थ को समझने में हमारी सहायता करते हैं।
But if you don't know your Bible,
लेकिन अगर आप अपनी बाइबल को नहीं जानते और यहाँ पे बैठे आप सोच रहे हैं,
where does it say about Abraham now?
और यहाँ पे इब्राहिम का कहाँ बताया?
Let's see, where is that? That's in Philippians.
इब्राहिम का कहाँ?
No, that's in I don't know where it is.
अगर आपको मालूम ही नहीं इब्राहिम के बारे में कहाँ वर्णन है बाइबल में, तो फिर
That's why you have to live in your Bible.
इसीलिए आपको अपने बाइबल में समय व्यतीत करना है.
So you can immediately make a connection.
ताकि आप तुरंत एक संबंध बना सके, स्थापित कर सके.
Any question?
कोई प्रश्न है आपके पास?
What did we do?
हमने क्या किया?
We let some scriptures interpret other scriptures.
हम क्या करते हैं? हम कुछ खंडों को दूसरे खंडों को अनुवाद करने के लिए उपयोग करते हैं.
Where following revelation gave more light on previous revelation.
और फिर हम देखते हैं कैसे है कि पुराने जो प्रकाशन है वो नए प्रकाशन पे प्रकाश डालते हैं किस तरह से.
You gotta know your Bible.
लेकिन आपको बाइबल को जानना हो, आपको
सोचना, you work hard,
आपको मेहनत करना,
be willing to study,
आपको पढ़ने के लिए तैयार होना है,
and you gotta pray.
और आपको प्रार्थना करना है.
Any question?
कोई प्रश्न है आपके पास? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? कोई दिक्कत? कोई समस्या? कोई कठिनाई? कोई असहमति?
Turn quickly to 1 Corinthians.
पहला कुरिन्थियों. आप नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे.
1 Corinthians chapter 2.
पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय.
Let's look at another passage and seek to interpret it.
इस खंड को देखेंगे और हम इसको अनुवाद करने का प्रयास करेंगे.
1 Corinthians chapter 2 and verse 2.
पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय दूसरा पद.
Paul said, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
पौलुस कहता है कि क्योंकि मैंने ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाया गया मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानूं.
So preachers say this.
तो प्रचारक लोग कहते हैं.
We are to preach Christ and Him crucified alone. That's all we preach.
तो लोग कुछ लोग ये कहते हैं हमें यीशु मसीह को प्रचार करना, केवल क्रूसित मसीह को प्रचार करना और कुछ नहीं करना प्रचार.
Every message we preach has to come back to Christ and Him crucified.
और हर एक संदेश हम प्रचार करेंगे वो पलट करके यीशु मसीह पे आएगा जो कि क्रूसित मसीह है.
Because Paul said, I determined to know nothing among you but Christ and Him crucified.
क्योंकि पौलुस ने कहा है कि हमने तुम्हारे बीच क्रूसित मसीह के अलावा किसी और को प्रचार करने का नहीं सोचा है.
Look in the book of Acts.
और प्रेरितों काम में देखिए.
Acts in chapter 20.
या प्रेरितों काम उसका 20वां अध्याय.
And verse 20.
और 20वां पद.
Paul is describing his ministry.
पौलुस अपनी सेवा के बारे में बात कर रहा है.
Acts chapter 20 verse 20. He said, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable.
कहता है कि मैं किसी तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से ना झिझका.
Verse 27.
27 पद.
I did not shrink from declaring to you the whole purpose or plan of God.
मैंने परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा तुम्हें बताने से ना झिझका.
Now in 1 Corinthians 2, he said, I determined to know nothing among you but Christ and Him crucified.
पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में कहता है कि मैंने यीशु मसीह को छोड़कर जो क्रूस है उसके अलावा किसी और को बात को नहीं बताने को सोचा.
And Acts chapter 20, he said, I taught you everything, all the purposes of God.
और 20 पद में कह रहा है प्रेरितों काम के कि मैंने सब कुछ तुमको बताना चाहा.
Did Paul contradict himself?
क्या पौलुस यहाँ पे विरोधाभास कर रहा है अपनी बातों को?
What's the context of 1 Corinthians chapter 2?
पहला कुरिन्थियों उसका दूसरे अध्याय का संदर्भ क्या है?
What is the context?
संदर्भ क्या है यहाँ पे?
Where is he preaching in 1 Corinthians chapter 2?
पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय में वो कहाँ प्रचार कर रहा है?
To whom is he preaching?
किसको प्रचार कर रहा है?
To the Corinthians.
कुरिन्थियों को प्रचार कर रहा है.
Is this the first or the tenth time that Paul has come to the Corinthians?
ये पहली बार है कि दसवीं बार यहाँ पे आ रहा है कुरिन्थियों के पास? पहली बार आ रहा है कि दसवीं बार आ रहा है?
You must know your Bible.
आपको अपने बाइबल में कुरिन्थियों में अभी तक गया कि नहीं गया? पहले कुरिन्थियों में गया कि नहीं गया अभी तक?
First time.
पहली बार जा रहा है कि दसवीं बार जा रहा है?
Who's he talking to?
किससे बात कर रहा है?
Unconverted Corinthian.
गैर विश्वासी कुरिन्थियों की बात कर रहा
है. So what does Paul mean here?
पॉलुस का क्या मतलब
है?
तो कह रहा है जब मैं तुम्हारे बीच में आया, जो लोग अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, सबसे पहली बार जब उनसे बात किया था उसने, तो उसने कहा केवल मैं यीशु मसीह के बारे में बात करूं जो क्रूस पे चढ़ा हुआ है।
When I go into an unreached, unevangelized area for the first time, my primary and sole message is Jesus Christ and Him crucified.
जब मैं किसी ऐसे स्थान में जाता हूँ जहाँ पहली बार गया हूँ, जहाँ पे कभी उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, तो पहला मेरा उद्देश्य है यीशु मसीह के बारे में बताना उनको।
But if he stayed longer, he continued to preach the whole counsel of God.
लेकिन अगर वहाँ पे थोड़े और समय तक रहता तो वो संपूर्ण परमेश्वर के उद्देश्यों को वहाँ पे बताता है।
So if a preacher says this,
लेकिन अगर कोई प्रचार
I'm only going to preach Christ and the gospel.
मैं केवल यीशु मसीह का प्रचार करूंगा और कुछ नहीं प्रचार करूंगा।
Because that's what Paul said.
क्योंकि वही तो पौलुस ने भी कहा था।
And every Sunday in the same church again and again he preaches the same message.
और हर एक संडे को उस कलीसिया में वही संदेश बार बार बताता है यीशु मसीह क्रूसित हुआ, क्रूसित हुआ।
Should we preach Christ and his gospel?
क्या हमें यीशु मसीह और उसके क्रूस का उसके सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए?
Of course we should.
बिल्कुल हमें करना चाहिए।
But listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात
को। What is the context?
संदर्भ क्या है?
Unconverted people.
अभी प्रभु को नहीं जानते लोग पहली बार आए वहां पे, और जो मुख्य संदेश वहां पे देना चाहते
हैं
उन्हें समझना यीशु मसीह कौन है,
what Jesus did,
क्या किया यीशु मसीह ने,
and what they must do,
और उन्हें करना क्या चाहिए।
when he stayed longer at Corinth,
जब वो लंबे समय तक
कुरिन्थ में longer at Ephesus,
और लंबे समय तक इफिसस में,
he said, I continued to teach you the whole counsel of God.
उसने कहा मैं तुमको संपूर्ण मसीह का उद्देश्य बताता हूँ,
I didn't hold back anything that was profitable.
और कोई भी चीज जो उपयोगी था उसको मैंने नहीं रख छोड़ा।
So if you are a preacher,
अगर आप प्रचारक हैं,
the foundational message,
और आपका आधारभूत संदेश
Jesus Christ and him crucified.
वह यीशु मसीह और क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह।
Build on that message more and more truth from the word of God.
लेकिन फिर आप उस संदेश के ऊपर और भी अधिक सत्यों को परमेश्वर के वचन से देते जाएंगे।
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं ना?
Very simple.
बहुत साधारण।
But you cannot take a verse and just pull it out and apply it to every sermon.
लेकिन आप किसी एक पद को लेकर के हर एक संदेश में नहीं जोड़ सकते।
Any question?
कोई प्रश्न आपको?
Look at the book of Ephesians.
इफिसियों के पत्र में देखिए।
Very quickly.
बहुत जल्दी।
Ephesians chapter 2.
इफिसियों का दूसरा अध्याय।
Talking about how to interpret the word of God.
हम लोग यहाँ पे बात करें कैसे परमेश्वर के वचन को अनुवाद करें हम लोग।
Ephesians chapter 2.
इफिसियों दूसरा अध्याय।
Verse
19. 19 पद।
He's speaking to the Gentiles.
वो गैर विश्वासियों
से। You're no longer strangers and aliens. You're fellow citizens with the saints and are of God's household.
वो गैर यहूदी से बात करते हुए कह रहे हैं तुम विदेशी अजनबी नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो।
And he said, now this household has a foundation.
फिर वो कह रहा है इस प्रभु के घर की एक बुनियाद है कोई।
And he said, you're built up upon the foundation of the apostles and the prophets, Christ being the cornerstone.
वो कहता है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है एक साल बनकर प्रभु में मंदिर बनते जा रहे हो।
So here's the question.
प्रश्न ये है
Are the apostles the foundation itself, or are the apostles the builders of the foundation?
जो प्रेरित लोग हैं वो लोग खुद नींव हैं कि प्रेरित लोग नींव बनाने वाले हैं? हाँ जी?
Look in the book of Revelation.
प्रकाशित वाक्य में देखिए.
Let Scripture interpret Scripture.
वचन ही वचन की व्याख्या करने दे.
Revelation chapter 21.
प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय।
Describing the new heavens and the new earth and the new Jerusalem.
नया स्वर्ग की बात हो रही है, नए पृथ्वी की बात हो रही है, नए यरूशलेम।
And the new Jerusalem is coming down out of heaven.
नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे आ रहा है।
That is all the church of God coming down and dwelling with Christ forever in a new heavens and a new earth.
मतलब ये हो गया संपूर्ण प्रभु की कलीसिया स्वर्ग से नीचे उतर के इस पृथ्वी पर नई पृथ्वी नई आकाश पे वास करेगी यीशु मसीह के साथ।
He figuratively describes the city.
और यहाँ पे चिन्हात्मक तौर पे इस शहर का वो वर्णन करता है।
Verse 14.
14 पद।
The wall of the city had 12 foundation stones, and on them were written the 12 names of the 12 apostles of the Lamb.
नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी जिन पे मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे।
Were the apostles the foundation?
क्या
they the foundation?
क्या प्रेरित लोग नींव थे कि नहीं थे, बुनियाद थे कि नहीं थे?
पहला
क्रंथों को देखिए,
First Corinthians in chapter 3.
पहला क्रंथों का तीसरा अध्याय.
Now listen, if you're going to properly interpret the word of God,
अगर आप परमेश्वर वचन को सही तरीके से अनुवाद करना चाहते हैं,
think,
तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जगे रहना पड़ेगा, आप आलसी नहीं हो सकते, और आपको सर दर्द लेना पड़ेगा, विशेष तौर से दिन के समय.
First Corinthians chapter 3.
पहला क्रंथियों तीसरा अध्याय.
Paul describes the church and he describes the ministry of the apostles.
पौलुस ने कलीसिया का वर्णन किया और पौलुस ने प्रेरितों की सेवा का वर्णन किया.
Verse 9.
नवा पद.
We are God's fellow workers, you are God's field, God's building.
और हम लोग परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर का खेत हो, परमेश्वर का भवन हो.
Verse 10. According to the grace of God given to me as a wise builder, I laid a foundation and another is building upon it.
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मैं प्रदान किया, मैंने कुशल राजमिस्त्री के भांति नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है.
Who does Paul say here is the builder of the foundation?
और यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि नींव डालने वाला कौन है?
Paul and the apostle.
पौलुस और प्रेरित.
Now John says in Revelation 21 that the apostles were the 12 foundation stones of the church.
और प्रकाशित वाक्य बताता है, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बताता है कि प्रेरित लोग तो यरूशलेम की नींव हैं.
But Paul says that he and the other apostles built or laid the foundation.
लेकिन पौलुस कह रहा है कि उसने और दूसरे भविष्यवक्ताओं ने तो नींव डाली है.
So here's the question.
तो प्रश्न ये है,
were the apostles themselves the foundation?
क्या प्रेरित लोग स्वयं नींव थे?
Or were they the builders of the foundation?
या वो लोग बनाने वाले थे नींव के?
You got two verses that seem to say different things.
दो पद हैं आपके सामने जो दो विपरीत बातें कह रहे हैं.
You remember those circles?
याद है आपको वो वृत्ताकार आकार, वृत्ताकार वृत्ताकार, गोले गोले,
big circle,
बड़ा सर्कल,
medium circle,
बीच वाला गोला,
little circle,
छोटा वाला गोला,
small circle,
सबसे छोटा गोला.
How does scripture interpret scripture?
वचन कैसे वचन की व्याख्या करता है, याद है?
The smallest circle,
सबसे छोटा वाला गोला क्या था?
Same author,
वही लेखक,
same book,
वही पुस्तक.
Next circle,
और फिर दूसरा गोला,
same author,
वही लेखक,
different book,
दूसरी पुस्तक.
Third circle,
और तीसरा गोला,
different author,
दूसरा लेखक,
same kind of literature,
एक ही जैसे शैली,
bigger circle,
और बड़ा गोला,
different author,
अलग अलग लेखक,
different kind of literature,
अलग अलग तरह की शैली.
You getting dizzy yet?
चक्कर आने लगा कि नहीं आने लगा?
Who wrote Revelation?
प्रकाशित वाक्य किसने लिखा?
Well, they actually wrote it down as the Lord spoke it to him.
उसने लिखा उसने, लेकिन बोला तो परमेश्वर ने था उससे, प्रभु ने.
What kind of literature is Revelation?
प्रकाशित वाक्य किस तरह का साहित्य है?
What we call prophetic or apocalyptic? You got a word for that?
We have भविष्य सूचक, भेद सूचक.
Listen carefully.
ध्यान सुनिए.
Different author,
अलग लेखक,
different literature,
अलग साहित्य.
Figures of speech, apocalyptic or prophetic literature,
अलंकार की भाषाएं या भेद सूचक संदेश है.
Different author,
अलग अलग लेखक.
That's the bigger circle,
ये बड़ा चक्कर है, गोला है.
First Corinthians,
पहला कुरिन्थियों.
What do we have?
क्या है हमारे पास यहाँ पे?
Same author,
एक ही लेखक है, एक ही लेखक है कि नहीं है?
Same kind of literature,
एक ही जैसा साहित्य है कि नहीं है?
Ephesians and First Corinthians are the same kind of literature.
Ephesians और कुरिन्थियों में एक ही तरह के लेखक हैं.
Paul wrote Ephesians and Paul wrote First Corinthians.
पौलुस ने ही इफिसियों को लिखा है और पौलुस ने ही कुरिन्थियों को लिखा है.
Applying our principle of scripture interpreting scripture.
और आप यहाँ पे वो सिद्धांत लगाइए कि कैसे वचन ही वचन की व्याख्या करता है.
What's the best possible interpretation?
तो अगर आप वाला सिद्धांत को लगाएंगे तो आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया उत्तम व्याख्या क्या होनी चाहिए?
The foundation, the apostles themselves.
क्या यहाँ पे नेव खुद भविष्यवक्ता लोग हैं?
Or did they build or lay the foundation?
या उन्होंने बनाया है और डाला है नींव? प्रेरितों ने सॉरी, उन्होंने डाला है कि खुद हैं? हाँ, अब्दुल इज सेइंग समथिंग एल्स. He's saying the foundation is Christ himself.
Christ is the foundation. Who laid the foundation?
मसीह बुनियाद है, लेकिन बुनियाद डाली किसने? हाँ?
The
apostles.
You understand what we're saying?
अब आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं.
Now listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को. आपको सोचना पड़ेगा इसको. जब मैं जवान प्रचारक था,
I studied in the morning,
तो मैं सुबह पढ़ता था.
But my mind was fresh,
जब मेरा दिमाग ताजा रहता था.
Because I knew in the afternoon,
क्योंकि मुझे वहां था दिन के टाइम.
If I would try to read the Bible and study,
जब मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश करूंगा, अध्ययन करूंगा,
you know what would happen,
तो आपको मालूम क्या होता है?
I would go to sleep.
मैं सोने चला जाता था दिन में.
And I've told you before,
और मैंने पहले बताया आपको.
I would lay down like that,
और मैं ऐसे ले जाता था.
Spit come out of my mouth,
और मैं मुझे थूक निकलता था.
And I would wake up,
और फिर मैं उठता था.
And my Bible be stuck to my face,
और मेरी बाइबल मेरे मुंह से चिपक जाती थी.
I had to pry it off,
और फिर मुझे हटाना पड़ता था.
Listen carefully,
ध्यान से सुनिए बात को.
You have to study the Word of God when your mind is freshest and ready to study.
आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है जब आपका मस्तिष्क सबसे ताजा है और पढ़ने के लिए तैयार है.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं ना?
Scripture interprets Scripture.
परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के वचन की व्याख्या करता है.
Very quickly.
बहुत जल्दी ना हो.
Let's look at 1 Timothy 2 verse 1.
और पहले तो मैं उसके दूसरे अध्याय उसके पहले पद देख ले.
Have you got this word? Verse 3. God desires all men to be saved.
Yes, it's in verse 4, yes.
4?
In verse 4, it's all. Yeah, it is.
It's 4?
Yeah.
All right, look in 1 Timothy chapter, what chapter is that?
2.
Chapter 2.
पहले तो मुझे उसको दूसरा अध्याय.
And verse 4.
और चौथा पद.
It says, God desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth.
इसमें लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें, सत्य को जाने, सब लोग.
What does he mean by all men?
उसका कहने का क्या मतलब है सब लोग?
What does he mean by all men?
यहाँ पे मतलब क्या उसका सब लोग से? सब से क्या मतलब है यहाँ पे?
Does he mean every man that ever lived from Adam until now?
क्या इसका ये मतलब है सारे लोग आदम से लेकर के अब तक कि जितने लोग पैदा हुए सब के सब? सब लोग?
How do we determine Paul's meaning?
अब हम कैसे जानेंगे यहाँ पे सब का मतलब क्या है?
We look at the context.
संदर्भ देखेंगे हम.
Look at verse 1.
पहला पद देखिए.
Do you see the same words?
वही शब्द है वहाँ पे कि नहीं है?
I urge that prayers and petitions and entreaties and thanksgiving be made on behalf of all men.
सब लोगों के लिए पहले दूसरे लाइक पहले पद में भी सब मनुष्यों के लिए अर्पित किए जाए प्रार्थनाएं विनतियाँ.
Does Paul mean we are to pray for every person that ever lived from Adam until now?
क्या दूसरे अध्याय उसके क्या दूसरे अध्याय उसके पहले पद के अनुसार पौलुस का ये कहना है कि जितने लोग आदम से लेकर के आज पैदा हुए हैं उन सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे?
वर्तमान में
7 अरब लोग इस दुनिया में, उनके लिए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे? कर चुके हैं आप शुरू करिए
What's the context?
He's saying that it's talking about present day. In today's day and age, all the people who exist, there are 7 billion people on this planet, we need to pray for them.
You know, he says all men, not just those that are living now.
अब आप बताइए यहाँ पे कह रहे हैं सब लोग खाली उनकी तो बात नहीं कर रहा जो लोग अभी जिंदा हैं सब लोग की बात कर रहे हैं तो जब से शुरुआत हुई दुनिया तब से लेकर जब तक चलेगी सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना अब बदल गया अब पलट गया
Look at verse 2.
दूसरे पद को देखिए आप यहाँ पे दूसरे पद को देखिए
What does he say?
यहाँ पे क्या कह रहा है
For kings and all those who are in authority.
राजा लोग और सब पदाधिकारियों के लिए
How does that help us interpret the verse?
तो अब ये जो दूसरा पद है वो हमको कैसे मदद करता है सब लोगों को समझने में
Is Paul saying, I want you to pray for all men without exception, or I want you to pray for all men without distinction?
क्या पॉलुस ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोगों के लिए प्रार्थना करो बिना कोई फर्क के सबके लिए प्रार्थना करो कि प्रार्थना करो बिना कोई भेदभाव किए हुए फर्क समझे नहीं समझाइए क्या पॉलुस कह रहा है कि हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करो या पॉलुस कह रहा है कि बिना भेदभाव किए हुए हर तरह के लोगों के लिए प्रार्थना करो
Well, you need to think about that verse.
मैं बात समझ नहीं समझ रहा आपको इस पद के बारे में सोचना है
Scripture interprets scripture.
परमेश्वर का वचन नहीं परमेश्वर के वचन की व्याख्या करता
है Probably whatever he meant in verse 1 is the same group of people that he's talking about in verse 4.
तो अगर जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है पौलुस दूसरे अध्याय के पहले पद में उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा है पौलुस चौथे अध्याय में भी सॉरी दूसरे अध्याय के चौथे पद में भी
Let's turn to the book of Ezekiel.
अब हम ऐसा यज़कील की पुस्तक में आइए
Ezekiel chapter 18.
यज़कील उसका 18 अध्याय में आई मेरे साथ
Some of you young men are reading through Ezekiel.
और कुछ लोग जवान भाई लोग यज़कील पढ़ रहे हैं पुराने नियम में दानियल से पहले
Let's look at chapter 18.
18 पद को पढ़िए 18 अध्याय को यज़कील उसका 18 अध्याय
Aren't they reading through Ezekiel? The prophets? Verse
23.
Do I have any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, but rather that the wicked should turn from his way and live.
18 अध्याय यज़कील 18 अध्याय 23 में प्रभु यहोवा की वाणी क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ क्या इसी से नहीं कि वो अपने मार्ग से फिर कर जीवित हो
Why?
क्यों?
Verse 32.
32 पद.
For I have no pleasure in the death of anyone who dies, declare the Lord.
जो मरता है उसकी मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ.
Therefore repent and live.
इसलिए पश्चाताप करो और जीवित रहो.
बालू.
खड़े हो जाओ. अरे हो खड़े.
Three questions.
तीन प्रश्न.
Number one.
पहला प्रश्न.
In the context.
इस संदर्भ के अनुसार.
Who is God through Ezekiel speaking to?
परमेश्वर यज़कील के द्वारा किससे बातचीत कर रहा है? गई भैंस पानी में. हाँ? He's talking to his people who are in bondage, in exile.
Where does it say that?
ये कहाँ कहा गया भाई?
Verse 25.
25वां पद.
Hear now, O house of Israel.
इसलिए है इज़राइल के घराने सुनो
Who is he speaking to?
कौन है ये लोग
He's speaking to the house of Israel.
वो बात कर रहे इज़राइल के घराने से
Verse 31.
31 पद
Why will you die, O house of Israel?
क्यों तुम मरोगे इज़राइल के लोगों
Question 2.
दूसरा प्रश्न
What kind of death is he talking about?
किस तरह की मृत्यु की बात यहाँ पे कर रहा है
talking about physical death of the body?
क्या वो बात कर रहा है शरीर की मृत्यु के बारे में
Spiritual death of the soul?
कि आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है आत्मा की
Or the political death, the removal of a nation?
और यहाँ पे बात कर राजनीतिक मृत्यु के मतलब एक देश के हटाए जाने की He's saying all three are possible. बहुत चालू.
They're all possible, but usually the verse has one meaning.
ये तीनों संभव हैं, लेकिन अक्सर पद के एक ही अर्थ होते हैं. तो यहाँ पे क्या अर्थ है यहाँ पे बालू भाई? तो शारीरिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं।
Question three.
तीसरा प्रश्न।
What is the basis of whether these people will live or die?
ये लोग जिएंगे या मरेंगे, उसका आधार क्या होगा? किस आधार पर लोग जिएंगे या किस आधार पर लोग मरेंगे?
Is it by the free grace of God or is it by their own practice of righteousness?
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो लोग जिएंगे या मरेंगे या अपने धार्मिकता के कार्यों को करने के द्वारा वो लोग जिएंगे या मरेंगे?
What do the verses say?
ये पद क्या कह रहे हैं?
If they do something, they will live.
अगर वो लोग कुछ करेंगे तो वो लोग जिंदा रहेंगे।
If they don't do something, they will die.
वो लोग कुछ नहीं करेंगे तो वो लोग मर जाएंगे।
What is the basis of whether they will live or die in this context?
इस संदर्भ के अनुसार इनके जीने या मरने का आधार क्या होगा? क्या करेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। Repentance.
Repentance and practicing and doing righteousness.
खाली पश्चाताप नहीं, लेकिन पश्चाताप के साथ धार्मिकता के काम को भी करना होगा इन्हें।
If they obey, they will live.
अगर वो लोग आज्ञा पालन करेंगे तो लोग जिएंगे।
If they do not obey, they will die.
अगर वो लोग आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो लोग मर जाएंगे।
Can a person be saved by their obedience?
क्या कोई व्यक्ति अपने आज्ञा पालन द्वारा बच सकता है?
Can a person be saved by practicing righteousness?
क्या कोई व्यक्ति धार्मिकता काम करने के द्वारा बचाया जा सकता है?
Is obedience in practicing righteousness the cause of salvation or the result of salvation?
क्या आज्ञाकारिता और धार्मिकता के कार्य करना हमारे उद्धार का कारण है कि आज्ञाकारिता और अधार्मिकता के काम करना हमारे उद्धार का परिणाम है? हाँ जी, अंकल जी सहमत नहीं है आपसे।
Are you truly saved by grace or by works?
क्या आप वास्तव में बचाए जाते हैं अनुग्रह के द्वारा कि कर्मों के द्वारा?
Are you saved by your own righteousness or by Christ's righteousness?
आप बचाए जाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा कि मसीह की धार्मिकता के द्वारा?
But what is Ezekiel saying to the house of Israel?
लेकिन यज़कियेल क्या कह रहा है इज़राइल के घराने से?
If you practice righteousness, you will live.
तुम अगर धार्मिकता काम करोगे तो तुम बच जाओगे।
If you disobey, you will die.
अगर तुम अनाज्ञाकारिता करोगे तो तुम मर जाओगे।
Is he talking about their spiritual salvation?
क्या वो उनके आत्मिक उद्धार की बात कर रहा है वो? हाँ जी। तो यहाँ भौतिक बातों कहाँ बात हो रही है यहाँ पे?
Okay, you can sit down now. We're not fully satisfied with your answer.
शून्य बटा जीरो मिला तुमको।
Listen carefully.
ध्यान सुनिए इस बात को।
Three questions.
तीन प्रश्न।
In the context.
संदर्भ में, यज़कियेल में किससे बात कर रहा है?
Israel.
इज़राइल से।
The physical Jewish people.
शारीरिक यहूदी लोग।
He says, "You will die."
प्रभु जी कह रहे हैं तुम मर जाओगे, मर जाओगे।
I have no delight in the death of the wicked.
वो कह रहे हैं कि मुझे कोई आनंद नहीं आता है दुष्ट के मृत्यु में।
In the context.
तो वो संदर्भ में।
What kind of death is he talking about?
और किस मृत्यु के बारे में बात कर रहा है वो? They all are saying different things.
Or let me ask you again.
फिर से पूछूं आपसे।
If a man will be saved.
अगर एक व्यक्ति बचाया जाएगा।
Will he be saved on the basis of practicing and doing righteousness?
क्या वो धार्मिकता करने के आधार पे, धार्मिकता के जीवन जीने के आधार पे बचाया जाएगा कोई व्यक्ति? क्या कोई व्यक्ति धार्मिकता के कार्य करने के आधार पर बचाया जाएगा?
But Ezekiel said, if you practice and obey and do righteousness, you will live.
आप तो नहीं कह रहे, लेकिन Ezekiel तो कह रहा है, तुम धार्मिकता के काम करोगे तो तुम बचाए जाओगे, तुम जीवन पाओगे.
Does he mean if you practice and do righteousness, you will be saved?
तो क्या यहाँ पे Ezekiel ये कह रहा है, तुम धार्मिकता के काम करो तो तुम बच जाओगे? हाँ? बदल गई शिक्षा की बड़ी जल्दी, 30 सेकंड के अंदर बदल गया. और तो आप कह रहे हैं धार्मिकता के काम करेंगे तो हम बच जाएंगे. ले याकूब को जोड़ दे कहां ले बीच में. नाउ ही सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ जेम्स दैट्स व्हाट इट इज ट्रू. They saying according to the time back then, in those days, God's grace wasn't available.
Now listen, we just studied Abraham.
गए सारे चर्चेस में. अभी इब्राहिम के बारे में बात किया हम लोगों ने, नहीं किया था अभी. इब्राहिम के बारे में बात किया था, नहीं किया था?
Have you forgotten that?
भूल गया आप? अरे भूलिए कि नहीं भूलिए? अरे भूले कि नहीं भूले?
He believed God and it was reckoned to him as righteousness.
इब्राहिम ने विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया.
Was Abraham saved by faith or was he saved by work?
इब्राहिम विश्वास के द्वारा बचाया गया कि धार्मिकता के काम के द्वारा बचाया गया? आप तो कह रहे हैं कि धार्मिकता के काम के द्वारा.
But listen carefully.
अब ध्यान से इस बात को.
What was the relationship of Abraham's faith and Abraham's works?
इब्राहिम के विश्वास और इब्राहिम के कार्यों का संबंध क्या था? बताइए. हाँ जी. अरे ना करता की बात नहीं, किया क्या हमको बताइए. तो विश्वास और आज्ञा की वजह से. So he believed and he worked.
So he saved by his works.
तो वो अपने कार्यों के द्वारा बचा जाता है. The first faith that works. दो चिपके चले.
Say in Ephesians chapter 2.
Ephesians को दूसरे अध्याय में पौलुस क्या कहता है?
Verses 8 and 9.
8 से 9 पद में.
We can all say it together.
हम दोनों साथ में बोल सकते हैं, बोलिए. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही और साथों में काम.
What does verse 10 say?
दसवां पद क्या कहता है वहां पे? दसवां पद क्या कहता है?
What is the relationship of faith and works?
वहां पे विश्वास का और कर्मों का संबंध क्या दिखाया जा रहा है?
A man is saved by grace through faith alone.
एक व्यक्ति बचाया जाता है अनुग्रह के ही द्वारा.
But the faith that saves him is never alone.
लेकिन जो विश्वास बचाता है वो कभी अकेला नहीं रहता है.
It is accompanied by and followed by works.
वो हमेशा विश्वास जो है हमेशा कार्यों के साथ रहता है.
One is the root.
एक तो जड़ है.
The other is the fruit.
दूसरा तो फल है.
One is the foundation.
एक तो बुनियाद है.
The other is the building.
दूसरे तो भवन है.
One is the cause.
एक तो कारण है.
The other is the result.
दूसरा तो परिणाम है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
If you preach to your people,
अगर आप अपने लोगों को प्रचार करेंगे,
you're saved by faith and works.
आप विश्वास और कार्यों के द्वारा बचाए जाते हैं.
What will they do?
तो वो लोग क्या करेंगे?
They will think they can earn their salvation.
तो वो लोग ये सोचेंगे कि वो लोग अपना उद्धार कमा सकते हैं.
That's legalism.
और वो क्या है? व्यवस्थावाद है, कानूनवाद है.
This is something we must be very clear on.
और ये बात के लिए हमको बहुत स्पष्ट होना राकेश भाई.
Paul says you're saved by grace through faith apart from works.
क्योंकि हम लोग उद्धार से ही हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हुआ है, कार्यों से अलग हट करके. कार्यों से कुछ लेना देना नहीं इसका.
James says you see that a man is not saved by faith alone, लेकिन, but by works.
लेकिन याकूब कहता है तुम देखते हो कि एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा ही नहीं लेकिन कार्यों के द्वारा भी उसका उद्धार होता है.
Paul and James contradict one another.
और पौलुस और याकूब जो है आपस में एक दूसरे से विरोधाभास कर रहे हैं, उल्टी बात बोल रहे हैं. नहीं, अभी तो सुना आपने उल्टी बात.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए बात को.
You must know the context and meaning of what Paul said.
आपको मालूम है कि संदर्भ पौलुस क्या कह रहा है, संदर्भ और अर्थ पौलुस क्या कह रहा है.
And you must know the context and meaning of what James meant.
और आपको मालूम है कि संदर्भ और अर्थ याकूब क्या कह रहा है.
So the next time I come,
तो अगली बार जब हम आएंगे,
I want you to give me a clear explanation of what Paul meant and what James meant.
और आप हमको बताएंगे कि याकूब का मतलब क्या था और पौलुस मतलब क्या था.
But listen carefully.
लेकिन ध्यान से इस बात को.
You cannot read everything in the New Testament back into the Old Testament.
आप हर एक चीज नए नियम में है वो पुराने नियम में वापस नहीं पढ़ सकते हैं.
You say, well, Ezekiel was talking to the house of Israel, but we now can apply this verse to all of us.
और आप कहेंगे ये इज़ेकेल जो है इज़राइल के घराने की बात कर रहा है, अब ये हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं इसको.
Well, Ezekiel was talking about physical death and possibly political death of the nation, but we're going to apply it to spiritual.
तो बात करता है यहाँ पे शारीरिक हो सकता है राजनीतिक मृत्यु की, लेकिन हम लोग इसको अपने ऊपर लागू कर लेंगे यहाँ पे.
Ezekiel said that the man is will live by his own obedience and righteousness.
और यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी धार्मिकता और अपने कार्यों के द्वारा जिएगा.
So we're going to preach that a man can be saved by his own obedience and righteousness.
तो हम भी कहेंगे कि एक व्यक्ति बचाया जा सकता है अपने अपने आज्ञाकारिता के द्वारा, अपने धार्मिकता काम के द्वारा.
That is a misuse and misinterpretation of Ezekiel chapter 18.
लेकिन ये तो इज़ेकियल उसके 18 अध्याय का गलत उपयोग है, दुरुपयोग है और गलत लागूकरण है. ध्यान से इस बात को.
You must accurately handle the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उपयोग करना है.
You must understand its context.
आपको उसका संदर्भ को समझना है.
Understand the meaning of words.
आपको शब्दों के अर्थों को समझना है.
You must understand some basic definition.
और आपको कुछ आधारभूत परिभाषाओं को समझना है.
Let's be very clear.
और अब हम लोग एक बात में साफ साफ समझ आइए.
I was a man's soul saved.
कैसे एक व्यक्ति के प्राण बचते हैं?
By his own righteousness.
क्या वो अपने स्वयं की धार्मिकता से बचता है?
By his own obedience.
क्या अपनी खुद की धार्मिकता से बचता है?
By his own good works.
क्या खुद के अच्छे कार्य से बचता है?
I was a man saved.
एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है?
Christ righteousness.
मसीह की धार्मिकता से.
Christ obedience.
मसीह की आज्ञाकारिता से.
Christ work of redemption.
मसीह के छुटकारे के काम से.
If a man is truly saved by grace through faith.
अगर एक व्यक्ति वास्तव में अनुग्रह से विश्वास के द्वारा ही बचाया जाता है.
He has truly repented and believed completely on the Lord Jesus Christ.
और अगर उसने वास्तव में पूरी तरह से यीशु मसीह पे भरोसा किया है.
What will be the result?
तो उसका परिणाम क्या होगा? बच तो गया है, लेकिन काम क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? अब
good works,
अच्छे कार्य,
obedience,
आज्ञाकारिता,
practice of righteousness,
धार्मिकता का कार्य जीवन.
Any man is in Christ,
अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो नई सृष्टि है.
Things pass away,
पुरानी विचार पीछे बीत गई, सब कुछ नया बन गया.
Listen carefully,
ध्यान से सुनिए.
One is the cause,
एक तो कारण है,
other is the result,
दूसरा तो परिणाम है.
One is the root,
एक तो जड़ है,
the other is the fruit,
दूसरा तो फल है.
So what is James talking about?
तो याकूब किस चीज के बारे में बात कर रहा है? पौलुस किस चीज के बारे में बात कर रहा है? पौलुस तो जड़ के बारे में बात कर रहा है. याकूब तो फल के बारे में बात कर
रहा है.
पौलुस तो बात कर रहा है परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का धर्मी ठहराया जाना.
It is by faith in the righteousness of Jesus Christ.
ये यीशु मसीह की धार्मिकता में विश्वास करने के द्वारा हमको ऐसा मिलता है.
A declaration of our justification and a demonstration of our justification before men.
और लेकिन याकूब तो बात कर रहा है मनुष्यों के सामने हमारे धर्मी ठहराए जाने की उद्घोषणा तथा हमारे धर्मी ठहराए जाने को सही ठहराया जाना लोगों के सामने.
Because he says, "Show me your faith by your works."
तो याकूब कहता है क्योंकि याकूब कहता है दिखाओ मुझे अपने धर्म अपने उद्धार को अपने कर्मों के द्वारा.
Listen carefully.
ध्यान से निकाल करो.
A man is justified and declared to be righteous in the sight of God by grace through faith alone.
एक व्यक्ति प्रभु के सामने धर्मी ठहराया जाता है केवल अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से.
A man is justified and declared to be righteous in the sight of men by his good works, obedience, and his changed life.
लेकिन एक व्यक्ति मनुष्यों के सामने धर्मी ठहराया जाता है उसके कार्यों के द्वारा बदले हुए जीवन के द्वारा.
James says it.
याकूब ये कहता है.
A man is truly saved.
अगर एक व्यक्ति वास्तव में उसका जन्म बचा लिए गए हैं.
It will not be separated from work.
तो वो कार्यों से अलग नहीं होगा उसका जीवन.
It will produce works.
तो वो वास्तव में अच्छे काम दिखाई देंगे फिर उसके जीवन में.
We need to study those passages in more detail.
आपको इन खंडों को और भी अधिक विस्तार से पढ़ना है.
Let me say it one more time.
एक बार फिर से कहूंगा मैं.
We are saved by grace through faith alone.
हम लोग विश्वास अनुग्रह से विश्वास ही के द्वारा बचाए जाते हैं केवल अनुग्रह से.
But the faith that saves us is never alone.
केवल हम लोग अनुग्रह से ही बचाए जाते हैं विश्वास से बचाए जाते हैं लेकिन जो विश्वास हमको बचाता है वो कभी अकेला नहीं रहता है.
It always produces works.
केवल विश्वास लेकिन केवल विश्वास अकेला नहीं रहता और वो हमेशा फलों को लेकर के आता है कार्यों के लिए आता है और उससे आगे कार्यकता उत्पन्न होती है.
It produces practical righteousness.
और व्यवहारिक धार्मिकता उत्पन्न होती है हमारे जीवनों में.
Any question?
कोई प्रश्न अब आपको कोई प्रश्न आपके सामने.
One of the greatest problems in the church today.
कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या आजकल.
Is a failure to distinguish between justification and sanctification.
धर्मी ठहराए जाना और पवित्रीकरण के बीच में भिन्नता करने में असफलता कलीसिया की एक बहुत बड़ी असफलता है.
To understand the relationship between saving faith and good works.
और हमारे बचाने वाले विश्वास में और अच्छे कार्यों में फर्क को ना समझना एक बहुत बड़ी असफलता है हमारे लिए.
Which comes first?
क्या चीज पहले आती है? क्या चीज पहले आती है? विश्वास की कार्य.
What must follow?
क्या चीज को जरूर ही बाद में आना चाहिए?
And if there are no works that follow,
अगर कोई कार्य नहीं है बाद में,
there was no true faith to begin with.
तो मतलब इसका ये कि शुरुआत में कोई आरंभ में कोई सच्चा विश्वास था ही नहीं.
Remember what Jesus said.
याद है यीशु मसीह ने क्या कहा?
Straight is the gate and narrow is the way that leads to eternal life.
सीधा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है.
Wide is the gate and broad is the way that leads to everlasting destruction.
चौड़ा है वो फाटक और रास्ता जो कि नरक के विनाश की ओर लेकर जाता है.
If you want to go to heaven,
अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको सही दरवाजे से होकर जाना पड़ेगा और आपको सही रास्ते में चल के भी जाना पड़ेगा.
What is the gate?
वो दरवाजा कौन सा है?
Jesus said, I am the door.
यीशु मसीह ने कहा मैं ही फाटक हूँ.
I am the door of the sheepfold.
और मैं ही भेड़शाला का दरवाजा हूँ.
I am the way, the truth, and the life.
मैं ही दरवाजा हूँ मार्ग और सत्य जीवन हूँ.
If a man enters by me, he will have life.
जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा.
How do you enter in the gate?
और आप उस दरवाजे में प्रवेश कैसे करते हैं?
Faith in Jesus Christ.
यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा.
True faith in Christ.
यीशु मसीह में सच्चा विश्वास.
And once a man enters the gate,
और अगर एक व्यक्ति मार्ग में प्रवेश करता है,
there's only one road to heaven.
और फिर एक ही रास्ता स्वर्ग के लिए.
And what is that road that leads to heaven?
और वो कौन सा रास्ता जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है?
It is the road of obedience.
और वो है आज्ञाकारिता का मार्ग.
The road of good works.
और वो अच्छे कार्यों का मार्ग.
It is the road of practical righteousness.
और वो व्यवहारिक धार्मिकता का मार्ग.
It is the road of discipleship.
और वो शिष्यता का मार्ग है वो.
That's the only road to heaven.
और स्वर्ग जाने का सिर्फ वही एक ही रास्ता तरीका है कोई और मार्ग नहीं है.
Comes first.
कौन सी बात पहले आती है? पहले दरवाजा आता है कि पहले रास्ता आता है?
If a man has entered through the gate, he must walk on that road.
अगर कोई व्यक्ति दरवाजे से प्रवेश करेगा तो उसको उस मार्ग पे चलना ही चलना पड़ेगा.
But a lot of people put the road before the gate.
लेकिन कई लोग हैं दरवाजे से पहले सड़क को लाके रख देते हैं.
If I obey,
अगर मैं मानूंगा,
if I do good works,
अगर मैं अच्छे काम करूंगा,
if I practice righteousness,
अगर मैं धार्मिकता का कार्य करूंगा, अगर मैं अपनी ताई दूंगा, अगर मैं कलीसिया जाऊंगा,
then I can get in the gate.
तब फिर मैं फाटक में प्रवेश कर सकता हूँ.
That's salvation by works.
वो है कार्यों के द्वारा उद्धार.
Don't put the way before the gate.
तो दरवाजे से पहले सड़क को मत खड़ा करिए.
Gate comes first.
पहले फाटक आएगा.
Then you walk away.
और फिर फाटक में से घुस करके फिर आप सड़क पे चलेंगे.
I've asked you before.
मैंने पहले पूछा आपसे.
If a man says, I've been through the narrow gate.
अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो सकरे मार्ग से सकरे फाटक से होकर जा चुका हूँ.
He's walking on the broad way.
और लेकिन फिर वो चौड़े मार्ग पे चल रहा है.
Has he really been through the gate?
क्या वो वास्तव में उस पतले फाटक में से होकर गया है?
Because there's one road attached to that gate.
क्योंकि दिक्कत ये है कि उस दरवाजे से उस फाटक से एक ही रास्ता है चिपका हुआ.
It's the only way to heaven.
और वही रास्ता है स्वर्ग जाने का, और कोई रास्ता नहीं है.
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए.
We enter into eternal life by entering in the gate.
और हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं उस फाटक में घुसने के द्वारा.
That is the basis or grounds of our salvation.
हमारे उद्धार का आधार या हमारे उद्धार की बुनियाद यही चीज है और कुछ नहीं है.
But the way of obedience is the way to heaven.
लेकिन आज्ञाकारिता का रास्ता ही है स्वर्ग का रास्ता.
It's not the cause of our salvation.
आज्ञाकारिता का रास्ता हमारे उद्धार का कारण नहीं है, जड़ नहीं है.
It is the way to heaven.
लेकिन वही मार्ग, वही तरीका, वही रास्ता है स्वर्ग जाने का.
We're not saved by walking the way.
रास्ते पे चलने के द्वारा हम बचाए नहीं जाते हैं.
We walk the way because we've been saved.
लेकिन हम उस रास्ते पे इसलिए चलते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं.
You understand what we're saying?
आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं?
Many preachers in India do not.
लेकिन बहुत सारे प्रचारक भारत में ये बात को नहीं समझते हैं.
And they confuse justification and sanctification.
तो इसलिए धर्मी ठहराए जाना और पवित्रीकरण दोनों को वो गड़बड़ कर देते, गड़बड़ देते.
Two extremes or two errors.
दो गलतियां हैं, दो चरम स्थितियां हैं.
Number one.
नंबर एक.
They mix justification and sanctification together.
वो लोग धर्मी ठहराए जाना और पवित्रीकरण दोनों प्रक्रियाओं के साथ में गड़बड़ देते हैं.
They say yes, you're justified by grace through faith.
तो लोग कहते हैं हाँ हाँ तुम धर्मी ठहराए जाते हो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से.
You must continue to grow in your sanctification in order to keep and to increase your justification.
लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुमको पवित्रीकरण में बढ़ते चले जाना है अगर तुमको अपना धर्मी ठहराए जाना बनाए रखना है या धर्मी ठहराए जाने को बढ़ाना है.
That is legalism.
उसको बोलते हैं व्यवस्थावाद, कानूनवाद.
The other extreme.
लेकिन दूसरी चरम स्थिति है.
To separate justification and sanctification.
वो ये करते तो एक लोग तो गबड़ देते, उठा के मिला देते हैं बिल्कुल. दूसरे लोग जो है धर्मी ठहराए जाना और पवित्रीकरण दोनों को अलग कर देते बिल्कुल.
Say that we are justified by grace through faith.
और वो कहते हैं कि हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं अनुग्रह से विश्वास के द्वारा.
That doesn't mean we're going to be sanctified.
और इसका ये मतलब जरूरी नहीं कि हम लोग का पवित्रीकरण होगा. धर्मी ठहरा दिए गए, पवित्रीकरण से कुछ लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं.
That is called licensed libertinism or antinomianism.
और इसको बोलते हैं गैर व्यवस्थावाद और फर्जी का, फालतू का काम करने वाला वाद.
Paul mentioned both of them in Galatians chapter 5.
और पौलुस इन दोनों के बारे में बात करता है गलतियों के पांचवें अध्याय में.
Let's look at it and then we'll take a break.
गलतियों के पांचवें अध्याय में इसके बाद. Are we going to take a break?
Well, you're over at 5.
We were going to let them go earlier.
Okay, all right, we won't take a break.
ब्रेक नहीं लेंगे हम लोग, चलते रहेंगे थोड़ी देर फिर छोड़ देंगे आपको जल्दी. वी कैन लेट देम गो एट 4 o'clock इंस्टेड ऑफ द ब्रेक.
गैलेशियन 5
गैलेशियन के पांचवा अध्याय
वर्स 1
पहले पद.
It is for freedom that Christ set you free, therefore keep standing firm and do not be subject to a yoke of slavery.
मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसलिए दृढ़ रहो, दासत्व के जुए में फिर ना जुओ.
What is he warning them against here?
वो उन्हें किस चीज के लिए वो चेतावनी दे रहा है? किसी के लिए चेतावनी दे रहा है? हाँ जी, या मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो, दासत्व के जुए में फिर ना जुतो. तो किस चीज की बात करें यहां पे? व्यवस्थावाद के विरोध की चेतावनी दे रहा है कि गैर व्यवस्थावाद के विरोध में चेतावनी दे रहा है? हाँ जी, व्यवस्थावाद, लीगलिज्म।
राइट, वर्स 13,
13 पद को देखिए, यहाँ पे 13 पद को
What does it say?
यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ
पे? You were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity of the flesh, but through love serve one another.
अरे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, तुम इस स्वतंत्रता को शारीरिक इच्छा पूर्ण करने का साधन ना बनाओ, परंतु प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो।
What is he warning them again?
किस चीज के बारे में इनको चेतावनी दे रहे हैं? अब यहाँ पे किसी तेरह पद किसी चीज चेतावनी दे रहा है? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यवस्थावाद के लिए चेतावनी दे रहे हैं कि गैर व्यवस्थावाद के लिए चेतावनी दे रहे हैं? हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं मतलब नहीं, जो भी है कोई भी चलेगा, दोनों चलेगा।
All right, let's look at two more verses.
दो और पदों को देख लें हमने यहाँ पे।
Acts chapter 15.
पे जो काम उसका 15 अध्याय।
And verse 1.
और पहला पद 15 का 1, फिर तो काम 15:1.
Now we're talking about justification and sanctification.
हम लोग बात कर रहे हैं धर्मी ठहराए जाने की और पवित्रीकरण की।
So we didn't get a complete answer from Balu.
क्योंकि बालू ने हमको सही सही उत्तर नहीं दिया, उसको 0/0 मिला है।
So we want to add to his answer.
और इसलिए हम उसके उत्तर को सही करने की कोशिश कर रहे हैं।
Acts 15.
फिर तो काम 15 अध्याय।
And verse 1.
और पहला पद।
What were these men teaching?
क्या सिखा रहे थे यहाँ पे लोग? यहाँ पे फिर तो काम 15 में ये लोग क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे लोग? तो ये लोग क्या सिखा रहे हैं? गैर व्यवस्थावाद की व्यवस्थावाद?
They were saying that you had to be circumcised according to the law of Moses in order to be saved.
तो ये लोग ये कह रहे हैं कि बचाए जाने के लिए, उद्धार पाने के लिए तुमको खतना कराने ही कराना पड़ेगा।
They were adding to the grace of God.
तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके ऊपर वो लोग कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ करने।
They do the same thing.
Pardon?
People today do the same thing.
आज भी लोग ऐसा करते हैं, पर अनुग्रह उधार पाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं।
And as you're baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, you cannot be saved.
तो कई लोग कहते हैं जब तक तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हो जाएगा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब तक बपतिस्मा नहीं होगा तब तक तुम बचाए नहीं जाओगे।
And as she speak in tongues, you cannot be saved.
या जब तक तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता।
And as you go to church, you cannot be saved.
या जब तक तुम चर्च नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा उद्धार होगा नहीं।
Unless you do good works, you cannot be saved.
जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार होगा नहीं।
Add to the grace of God.
तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह पे जोड़ देते चीजों को। ये कानूनवाद व्यवस्था
Mixing justification and sanctification.
और जब लोग ऐसा करते हैं तो लोग धर्मी ठहराया जाना और पवित्रीकरण दोनों को गबड़ दे रहे हैं।
How many times is a man justified?
कितनी बार को एक व्यक्ति कितनी बार धर्मी ठहराया जाता है? एक बार सिर्फ? सिर्फ एक बार?
एक बार धर्मी
ठहर गया
था। When is he justified? कब धर्मी ठहराया था? एक बार।
When he believed.
जब वो विश्वास करता है, एक ही बार, सिर्फ एक बार।
Justified by grace through faith.
हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से विश्वास के द्वारा, एक ही बार।
Once at a point in time.
एक बार होता है निर्धारित समय में जब हम विश्वास करते तब।
Is sanctification a one-time thing?
क्या पवित्रीकरण एक बार की बात है केवल?
Now you remember before we talked about sanctification is a process.
हमने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद होगा, पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है।
We're talking about progressive sanctification.
और हम बात कर रहे हैं प्रगतिमान, प्रगतिशील पवित्रीकरण की।
But the legalist says you must do something to add to the grace of God in Jesus Christ.
लेकिन जो व्यवस्थावाद है, जो कानूनवाद करता है, वो ये कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा।
Now look in the book of Jude.
याकूब की पत्री में आइए।
This verse in Jude.
Sorry, यहूदा। यहूदा की बात है। दोनों भाई हैं।
Jude verse 3.
यहूदा उसके तीसरे पद में।
Look at it.
देखिए यहाँ पे।
Jude said, "Beloved, I was making every effort to write to you about our common salvation."
यहूदा उसके तीसरे पद में कहता है कि मैं उस उद्धार के विषय में लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ जो उसमें हम सहभागी हैं।
He That I wanted to talk to you more about the grace of God.
वो कह रहा है कि हम तुमसे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में और बात करना मांग रहे थे.
About our so great salvation.
हमारा महान उद्धार के बारे में बात करना मांग रहे थे.
About our redemption in Jesus Christ.
हमारा उद्धार जो यीशु मसीह में छुटकारा है.
About our justification in Jesus Christ.
हमारा धर्मी ठहराया जाना यीशु मसीह में.
About how we're saved.
हम कैसे बचाए गए हैं.
About all the blessings that flow from salvation.
और कैसे सारे उद्धार जो आशीष जो उद्धार से निकल के आती हैं.
I felt necessary to write to you appealing that you fight earnestly for the faith once and all for deliverance.
और वो कहता है कि मैंने इस बात को समझा जरूरी है कि मैं तुमको लिखूं उस विश्वास के बारे में जो हमको एक बार के लिए हमेशा के लिए दे दिया गया है.
Why?
क्यों?
Verse 4.
चौथा पद. चौथा पद देखिए.
What does verse 4 say?
चौथा पद में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे?
Persons have crept in unnoticed long beforehand were marked for this condemnation.
चौथा पद में देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो चुपके से चले आए हैं जो पहले से ही अपराध के दोषी ठहराए जा चुके हैं.
And what did they teach?
और क्या सिखाया उन्होंने चौथे पद में? देखिए चौथे पद देखिए यहूदा 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 चौथे पद में. और क्या सिखा रहे हैं लोग? क्या सिखा रहे हैं वो लोग? क्या सिखा रहे चौथे पद में यहूदा उसके चौथे?
What is that?
मतलब क्या हुआ उसका? क्या कर रहे हैं लोग?
They said this.
वो लोग ये कह रहे हैं.
We're saved by grace through faith.
तो जो यहाँ के लोग वो लोग ये कह रहे हैं हम लोग तो अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए. अब हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है. हम लोग अनुग्रह के अधीन है. अब हम लोग आदम में नहीं है. हम मसीह में.
We are free in Christ.
हम मसीह में स्वतंत्र हो गए. हमारे सारे पाप क्षमा हो गए. चाहे हम जितना भी पाप करें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों को ढांक देता है. बल्कि जितना ज्यादा हम पाप करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को महिमा मिलेगी. तो दो चरम स्थिति होगी कि नहीं? दो दो तरह के लोग होंगे नहीं होंगे? आप देख रहे हैं फर्क देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं?
One extreme is to mix justification and sanctification.
तो एक लोग कह रहे हैं नहीं धर्मी ठहराया जाना पवित्रीकरण दोनों साथ ही साथ में है.
We say yes, we're justified by grace through faith in Christ.
तो हम कहते हैं हाँ हाँ हम अनुग्रह से विश्वासी के द्वारा धर्मी ठहराए गए हम मानते हैं इस बात को.
But we must obey in order to keep or to increase our justification.
तो फिर वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम धर्मी तो ठहराए गए हैं विश्वास से अनुग्रह के द्वारा लेकिन हमने धर्मी ठहराए जाने को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए हमको प्रतिदिन आज्ञाकारिता में बढ़ते रहना पड़ेगा.
That is legalism.
लेकिन जब कहते हैं कि हमें अपने धर्मी ठहराए जाने को बनाए रखने के लिए बढ़ाने के लिए आज्ञाकारिता में बनते रहना पड़ेगा प्रतिदिन तो वो व्यवस्थावाद है कानूनवाद है वो गलत है. और बहुत सारे प्रचारक लोग भारत में इसी तरह का प्रचार करते हैं कि तुमको कुछ करना पड़ेगा. हो सकता है आप लोग कुछ लोग हैं जो इस तरह का प्रचार करते हैं क्योंकि हो सकता है परमेश्वर के अनुग्रह को पूरी तरह से नहीं समझते हैं. हो सकता है आप परमेश्वर के सुसमाचार को पूरी तरह से नहीं समझते हैं. हो सकता है आप उद्धार के रास्ते को भी नहीं समझते हैं पूरी तरह से. हो सकता है सच्चे हृदय परिवर्तन को आप नहीं समझते.
If you're going to preach to people,
लेकिन ध्यान से सुनिए अगर आप लोगों को प्रचार करेंगे तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको समझना ही समझना पड़ेगा. सुसमाचार क्या है? सच्चा उद्धार क्या है? सच्चा हृदय परिवर्तन क्या है? धर्मी ठहराया जाना क्या है? पवित्रीकरण क्या है? उन दोनों का संबंध क्या है? हमारा धर्मी ठहराया जाने का आधार क्या है? हमारे पवित्रीकरण आधार क्या है? हो सकता है इस कमरे में आप में से कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं.
What is the gospel?
सुसमाचार क्या है? तीन बातें.
The life of Christ,
मसीह का जीवन.
The death of Christ,
मसीह की मृत्यु. और मसीह का जी उठना पुनरुत्थान. हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं. यीशु मसीह ने जो तीन चीजें की वही सुसमाचार है. और सुसमाचार वो है जो यीशु मसीह ने किया है.
In his life,
उसने अपने जीवन में
death,
अपने मृत्यु में
his resurrection.
और अपने जी उठने में.
Justification is not the gospel.
और धर्मी ठहराया जाना सुसमाचार नहीं है.
Justification is a glorious result of the gospel.
और धर्मी ठहराया जाना सुसमाचार का एक महिमान्वित महिमामय परिणाम है. पवित्रीकरण सुसमाचार नहीं है.
It is a glorious result of the gospel.
वो सुसमाचार का एक महिमान्वित परिणाम है. तो फिर सुसमाचार क्या है? सुसमाचार वो है जो यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले किया, अपने जीवन में, अपने मृत्यु में और अपने जी उठने में. और ये है परमेश्वर की सामर्थ्य. अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे और अगर आप इसको सफाई से नहीं प्रचार करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे इस बात को, तो लोग बचेंगे नहीं. फिर और यीशु मसीह का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है बताइए? यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया क्या आखिरकार? यह हमने कई बार बताया आपको. तीन बातें क्या यीशु मसीह ने जीवन में? पहली बात, उसने ये परमेश्वर के सत्यों को लोगों को सिखाया. दूसरी बात, वो परमेश्वर के राज को लेकर के आया. और तीसरी बात, और उसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन भी किया. और यीशु मसीह ने यही अपने जीवन के द्वारा किया. परमेश्वर के सत्य के बारे में सिखाया, परमेश्वर के राज को लेकर के आए संसार में, और उसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन भी किया. उसने अपने लिए नहीं किया ये बात, लेकिन उन लोग ले जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया. और उसने अपने मृत्यु में क्या किया? उसने और तीन चीजें की. उसने तीन परिणाम. यीशु मसीह के मृत्यु के तीन क्या मुख्य बातें, क्या चिन्ह? पहली बात कि वो हमारे बदले में हुआ और वो लोगों के जगह में पापियों के स्थान में मरा. दूसरी बात, और वो एक बलिदान था, त्याग था. उसने परमेश्वर को अपने आप को सुंदर महकता हुआ बलिदान करके चढ़ा दिया. तीसरी बात, वो एक 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 हमारे बदले में छुटकारे का दान था. हमने इसके बारे में कई बार बात किया. वो फिरौती के रूप में दे दिया गया. तीन चरित्र, तीन बातें हमारे बदले में, और बलिदान था और एक कीमत चुकाया गया था. और इन वजह से तीन चीजें होती हैं: छुटकारा, परमेश्वर के क्रोध को शांत करना और परमेश्वर से संबंध स्थापित कर देना. अब ये शब्द आपको मालूम होने चाहिए, आपको इनके अर्थ मालूम होने चाहिए, और ये चीज आप बाइबल ढूंढ सकते हैं बाब, और आप ये बातें आप सफाई से लोगों के सामने प्रचार कर सकते हैं. छुटकारा क्या है? परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के प्रायश्चित का काम क्या है? और परमेश्वर से मेल मिलाप का काम क्या है? ये सब बाइबल में पाए जाने वाले शब्द हैं. पिछले 5 सालों से इस जगह पर इस बूढ़े व्यक्ति ने आपको बार बार इस सुसमाचार को सिखाने का प्रयास किया मैंने, ताकि आप समझे इसको, विश्वास करें इसको, और फिर उसको सफाई से बोलें. उसका धार्मिकता का जीवन, उसका त्यागपूर्ण बलिदान और उसका महिमापूर्ण पुनरुत्थान, उसके पुनरुत्थान के द्वारा क्या प्राप्त हुआ, क्या किया प्रभु जी ने? उसके पुनरुत्थान के द्वारा ये घोषणा की गई कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो उसकी आत्मा में धर्मी ठहरा दिया गया. उसका बलिदान स्वीकार कर दिया गया, उसका बलिदान पूरा हो गया, और अब वो प्रभु के रूप में ऊंचे पे उठा दिया गया है. ध्यान से नहीं जाओ, ये है सुसमाचार. सुसमाचार है क्या आखिरकार? और सुसमाचार वो है जो यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले किया, अपने जीवन में वो धर्मी था, अपनी मृत्यु में वो बलिदान त्यागपूर्ण था, अपने जी उठने में वो धर्मी ठहरा दिया गया, उसको घोषित किया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है. अगर आप ये बात समझते नहीं है, अगर आप इस सत्य में और गहराई से नहीं जाते हैं, अगर आप इसको सफाई से दूसरों को बताएंगे नहीं, अगर आप परमेश्वर के सत्य को खोल नहीं सकते, बता नहीं सकते लोगों को, तो लोग बचे बचेंगे नहीं
और
जो विश्वासी लोग हैं वो लोग मजबूत नहीं किए जाएंगे और फिर वो लोग ये सोचने लगेंगे ये मेरी धार्मिकता है ये मेरा बलिदान है ये मेरे अच्छे काम है लेकिन अगर आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे उसका धार्मिकता का जीवन उसका त्यागपूर्ण मृत्यु और उसका महिमा से पूर्ण पुनरुत्थान और ध्यान से इस बात को और आपको इन तथ्यों में सत्यों में और भी अधिक गहराई से जाते रहना पड़ेगा
So when we say redemption,
तो जब हम कहते छुटकारा
you give me six or seven verses,
तो आपको मुझे छह या सात पद एक के बाद एक देना चाहिए
explain the three main aspects of redemption,
और आपको मुझे तीन मुख्य बताने पड़ेंगे बातें छुटकारे से संबंधित आप उसको खोल सकें
can explain it to people,
आप लोगों को समझा सकें
you have got to be able to do that,
आपको ये करना आना चाहिए
listen carefully,
ध्यान से सुनिए
not your blood,
आपका खून नहीं
his blood,
उसका खून
not your sacrifice,
आपका बलिदान नहीं उसका बलिदान आपकी धार्मिकता नहीं उसकी धार्मिकता आपकी आज्ञाकारिता नहीं उसकी आज्ञाकारिता आपका नया जीवन नहीं और उसका पुनरुत्थान का जीवन क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को क्या आप जानते हैं इस बात को क्या आप उसको सफाई से प्रचार करते हैं अब भारत बचाया जाएगा आपके स्वयं की शिक्षा के द्वारा नहीं होगा आपके बढ़िया शब्दों के द्वारा नहीं होगा पौलुस कहता है उद्धार के लिए सुसमाचार ही सामर्थ है यीशु मसीह ने कहा जब मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा तो मैं सारे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ अगर मैं आपसे पूछूं क्यों करके यीशु मसीह का जीवन महत्वपूर्ण था और आवश्यक था
What did Jesus accomplish in his death?
यीशु मसीह ने अपने मृत्यु में क्या चीज को पूरा किया
Why was the resurrection important?
और जी उठना क्यों जरूरी था
So we proclaim to men what Jesus did.
तो हम लोगों को घोषित करते हैं जो यीशु मसीह ने किया है क्या आप समझते हैं इस बात को क्या आप इसको स्पष्ट से प्रचार करते हैं क्या आप अपने वचन को खोल सकते हैं क्या आप लोगों को परमेश्वर के वचन में से दिखा सकते हैं और फिर उसके बाद और उनको आप उपदेश दे सकते हैं क्या करना चाहिए उन्हें बचने के लिए अपने स्वयं की आज्ञाकारिता के द्वारा नहीं अपने बपतिस्मे के द्वारा नहीं उनके अच्छे कामों के द्वारा नहीं उनके उनके पिता माता के उनके अनुसार नहीं उनके कोई शारीरिक चंगाई के द्वारा नहीं कोई भावनात्मक अनुभव के कारण नहीं यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाने के द्वारा नहीं अगर आप बचाए जाना चाहते हैं दो चीजें करना पड़ेंगे आपको क्या कहा पॉलस ने और पॉलस के बाद यूनानी और यहूदी दोनों के सामने मैं इस बात की गवाही देता हूं परमेश्वर की ओर पश्चाताप और यीशु मसीह में विश्वास ये दो चीजें पश्चाताप क्या है और बचाने वाला विश्वास क्या है हमने इसका वर्णन किया है और इसका पुनरावृत्ति की कई बार और अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये नींव बनानी पड़ेगी बुनियाद बनानी पड़ेगी यीशु मसीह और उसका सुसमाचार ही बुनियाद है और आपकी जिम्मेदारी और क्रूज को आप उठाएं और उसको इस तरह से घुमाएं और फिर उस तरह से घुमाएं और फिर इस तरह से घुमाएं और लोगों को देखने दें कि क्रूज के ऊपर क्या हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर मैं ऊपर उठाया जाऊंगा मैं लोगों को अपनी ओर खींचूंगा क्योंकि वो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है. एक ही जीवन है, एक ही बाइबल है, एक ही सुसमाचार है, एक ही तरीका है उद्धार का. आपकी जिम्मेदारी कि जानना उसको, विश्वास करना है, जीना है उसको, और सफाई से बताना है उसे. और फिर लोगों से आप ये कहेंगे, और आप लोग कहेंगे तुम अपने आप को नहीं बचा सकते हो, तुम्हारे अच्छे काम बेकार हैं, तुम्हारी आज्ञाकारिता बर्बाद है. अगर तुम बचना चाहते हो, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, अगर तुम पापों को क्षमा चाहते हो, अगर तुम अनंत काल का जीवन चाहते हो, तो तुम्हें दो चीजें करनी होंगी. तुम अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप करो, और तुम्हें यीशु मसीह जो प्रभु है उस पर विश्वास करना होगा. और सच्चा विश्वास क्या है? अपने मस्तिष्क में समझ, अपने हृदय में आज्ञाकारिता, और अपने मुंह से मांगना, और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देना. संपूर्ण मनुष्य, और संपूर्ण मसीह पे विश्वास करना, उसको गले लगाना, यही है नया जन्म प्राप्त करने का मतलब. अगर एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता है, तो वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है. और ध्यान से इस बात को, क्या आप सुसमाचार को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सुसमाचार वो है जो यीशु मसीह ने किया. यीशु मसीह सुसमाचार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने सुसमाचार के काम को पूरा किया. जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो हम यीशु मसीह के व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और यीशु मसीह के कार्य की बात करते हैं. यीशु मसीह तो वो है जो वो है, वो अनंत काल से जो ईश्वर है, और वो पाप रहित मनुष्यत्व में, वो दोनों एक जन्म है. और वो ईश्वर ने, और 100% पाप रहित मनुष्य ने वो सुसमाचार का कार्य कर दिया लगभग 2000 साल पहले, और वो पूरा हो गया है और खत्म हो गया
है.
और वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा करके बैठ गया है, एक समय के लिए हमेशा का बलिदान का काम पूरा करने के बाद. और अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अब हमको सुसमाचार बताना लोगों को, और फिर उसको ग्रहण करना है. और आप उसको ग्रहण करते दो हाथों से, पश्चाताप के हाथ से और विश्वास के हाथ से. और जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, और जब मसीह पे विश्वास करता है, अपने सर में नहीं केवल, लेकिन अपने हृदय में भी, और फिर अपने मुंह से भी अंगीकार करता है मसीह को, और अपने जीवन से संपूर्णता से यीशु मसीह पे भरोसा करता है, और फिर वो ये कहता है, मेरा उद्धार, मेरी धार्मिकता, मेरा छुटकारा मेरे स्वयं में नहीं है, लेकिन वो उस व्यक्ति में जो स्वर्ग में है, वो है मेरी धार्मिकता, वो है मेरा उद्धार, वो है मेरा छुटकारा. वो व्यक्ति जो स्वर्ग में विराजमान है, वो एक वास्तविक व्यक्ति है, और जिसके शरीर में 5 निशान है. एक दिन जब आप स्वर्ग जाएंगे, और जब आप उसको मेमने के समान देखेंगे जो वध किया हुआ है, उसके हाथों में निशान देखेंगे, उसके पैरों में निशान देखेंगे, और उसके बगल में आप निशान को देखेंगे, तो फिर आप ये कहेंगे, वो है मेरी धार्मिकता. वो है मेरा उद्धार. क्या आप कह सकते हैं इस बात को? क्या आप कह सकते इस बात को? क्या आप इस चीज का प्रचार कर सकते हैं? ध्यान से सुनिए बात को. स्वर्ग में एक आदमी है, वो मेरे जैसे नहीं दिखता है, वो आपके जैसे दिखता है. उनके काले बाल हैं, काले खाल है उनकी. और यूहन्ना उसके छाती पे झुका था, और प्रकाशित वाक्य में कहता है, हमने उसको देखा है. और क्या किया? उसके पैरों पे गिर गया. ध्यान सुनिए बात को. एक दिन जब हम उसको देखेंगे, तब हम गिर जाएंगे उसके सामने। और फिर हम उसे कहेंगे वो मेमना इस योग्य है, आदर के योग्य है जिसका जो वध किया गया था। और महिमा आदर और हमेशा तक पाने के लिए इस योग्य है वो, क्योंकि तुम तो मारे गए थे क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल भाषा लोग और जाति से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। और मेरे दोस्तों, जब आप उसके आज्ञाकारिता से भरे हुए जीवन के बारे में सोचते हैं और उसके त्यागपूर्ण मृत्यु के बारे में सोचते हैं और उसके महिमा से भरे हुए पुनरुत्थान के बारे में सोचते हैं और आप उसको सामर्थ के साथ प्रचार करें पवित्र आत्मा के प्रभाव में होकर के, और जब पौलुस के समान आप कह सकते हैं कि ये मेरा सुसमाचार है, और जब आप अपने हृदय से इस बात का प्रचार कर सकेंगे तो लोग बचेंगे ही बचेंगे, सब नहीं लेकिन कुछ लोग बचेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपको अपने घुटनों पर जीना है और इस पुस्तक में जीना है और क्रूस के चरणों में जीना है और सुसमाचार के अर्थ को समझना है और स्पष्टता के साथ प्रचार करना है और सामर्थ्य के साथ प्रचार करना है लोगों के हृदयों तक। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? क्या विश्वास करते हैं आप इस बात को? क्या विश्वास करते हैं इस बात को? क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? मैं विश्वास करता हूँ। मैं 67 साल का हो गया लेकिन मैं आज इस पर विश्वास करता हूँ, पहले जितना विश्वास करता था उससे कहीं अधिक। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करिए, अपने घुटनों पर जिए, इस पुस्तक में जिए, क्रूस की निकटता में जिए। मेरे मित्रों, आप क्रूस का सुसमाचार प्रचार करिए और आप देखेंगे उसके सामर्थ्य को। आइए, मेरे पास में आए।